इन्फॉर्मेशन। जैसे ही रौनक गार्डन की ओर गई, आहान को लगा कि कहीं उसे अरमान की बात ज्यादा बुरी तो नहीं लग गई, शायद इसलिए वो घर के बाहर जा रही है, या फिर वो इस घर छोड़कर जा रही है। क्या वो मुझे भी छोड़कर चली जाएगी? क्या वो अपने छछुंदर को छोड़कर चली जाएगी? अब आगे? अब अरमान की ये बात सुनकर आहान ने मायूसी से रौनक को बाहर जाते हुए देखा और फिर जल्दी से बात बदलते हुए बोला, अरमान भाई, मैं बिल्कुल भी ये सीन देख नहीं पाया कि किसी ने आज आपके कंधे पर हाथ रखा, वो भी द ग्रेट अरमान सिंघानिया के कंधे पर हाथ रखा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जा रहा हूं उस लड़की को सबक सिखाने के लिए। इतना बोलकर आहान अरमान की बात सुने बिना ही गार्डन की ओर दौड़ पड़ा और जल्दी से बाहर जाने लगा। कहीं न कहीं उसके मन में यही डर बैठ गया था कि रौनक घर छोड़कर ना चली जाए। उसने परेशान मन से सोचा, अगर रौनक वाकई घर छोड़कर चली गई तो उसका क्या होगा? क्या मेरा बच्चा सड़कों पर पैदा होगा? नहीं। ये सोचकर वो जोरों से चिल्ला दिया और जल्दी ही रौनक के पीछे पीछे गार्डन में पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर आहान के जाने के बाद अरमान उसे अविश्वास से देखता ही रह गया कि अचानक से आहान क्यों वहां से हड़बड़ाकर चला गया। फिलहाल उसने नानी माँ को गुस्से भरी नजर से देखा और अगले ही पल तंज कसा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप सबको, लेकिन मेरा परिवार सही और गलत की पहचान नहीं रखता। फिलहाल आप लोग केवल कुछ दिनों के लिए यहाँ के मेहमान हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अलग से रहने का बंदोबस्त करने के बारे में सोच चुका हूँ। सुमित, ध्रुव और आकाश तीनों एक साथ बोले। वॉट? उनकी आवाज सुनकर अरमान ने अब उन तीनों को सवालिया नजरों से घूरा। जैसे ही अरमान ने नजर उठाई, वे तीनों एकदम सीधे होकर खड़े हो गए। तभी आकाश जल्दी से बात संभालते हुए हिचकिचाकर बोला, अरमान, हमारे कहने का मतलब ये था कि दादाजी ने इन लोगों को यहां रखा हुआ है, इन्होंने अभिमान अंकल जी की जान बचाई थी, और फिर वसुंधरा और वीर भी तैयार बैठे हैं। अगर घर में मेंबर्स ही नहीं रहेंगे तो हम उनसे नौकर वाला कैसे करवाएंगे? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ये कहते हुए आकाश जल्दी से अरमान की दूसरी साइड जाकर खड़ा हो गया और थोड़ा डरते हुए बोला, अरमान, ये लोग हमारे लिए काम भी तो कर सकते हैं, हम इनका इस्तेमाल वसुंधरा और वीर को सजा देने के लिए कर सकते हैं। वैसे भी ये लोग यहाँ रह ही रहे हैं तो क्यों ना इन्हें उनके पीछे लगा दें, ताकि ये उन्हें अच्छी तरह से परेशान कर सकें और हमें ज्यादा से ज्यादा सुकून मिले। ये सुनकर अरमान ने सुमित की ओर देखा और बस एक ही शब्द बोला, इंटरेस्टिंग। फिर वो सीधा वहां से बाहर निकल गया। वहीं अभिमान जी, जो इस वक्त दादाजी के साथ कमरे में मौजूद थे, वो और भी इमोशनल हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि आज जो कुछ तमाशा हुआ है वो सिर्फ उनकी वजह से हो रहा था। काश वे जिंदा ही ना बचे होते तो शायद इन लोगों के लिए इतनी मुसीबत ना खड़ी होती, क्योंकि रौनक और रश्मि दोनों ही प्रेग्नेंट थीं और दोनों को ही अपने अपने पतियों से अलग रहना पड़ रहा था। ये बात उन्हें और भी ज्यादा दर्द दे रही थी। फिलहाल इससे पहले कि दादाजी अभिमान जी को कुछ समझा पाते, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने देखा नानी माँ, रश्मि, राधिका, वंशिका, ध्रुव, आकाश, सुमित सब इस वक्त अभिमान जी के कमरे में मौजूद थे। सभी की आंखें कहीं ना कहीं आंसुओं से नम थीं। तभी सभी लड़कियां अभिमान जी के पास आई, उनका हाथ थामकर बोली, आप जानते हैं हमेशा से हमारी जिंदगी में पिता की कमी थी, जो आपके आने के बाद पूरी हो चुकी है। दादाजी और नानी माँ तो हमेशा हमारे लिए मौजूद थे, लेकिन फिर भी हमें एक अजीब सी कमी महसूस होती थी, लेकिन आपके आने के बाद वो हमारी जिंदगी में वो कमी पूरी हो गई है। तो आपको क्यों लगता है कि आपकी वजह से हमें कोई परेशानी हो सकती है? फिर नानी माँ अभिमान जी को समझाते हुए कोमलता से बोली, बेटा, हम जानते हैं कि ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन इसमें आपको खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अभिमान जी तुरंत भावुक उठे। उन्होंने सबको गले से लगा लिया और हल्की नम आंखों से बोले, आपको पता है माँ, अभिमान जी ने भावुक होकर नानी माँ को माँ बुलाया था। फिर वो दर्द भरी आवाज में आगे बोले, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई हो। नानी माँ ये शब्द सुनकर पूरी तरह गदगद हो उठी। उन्होंने अभिमान जी के माथे को चूमकर कहा, बेटा, ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी की एक बड़ी कमी पूरी हो गई है। हमारे पास बेटा तो था, लेकिन हमारे संगे बेगे ने कभी वो मान सम्मान और प्यार नहीं दिया जो हमें तुमसे मिला है। ये बोलते हुए नानी माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। थोड़ी देर तक अभिमान जी और नानी माँ गले से लगकर रोते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद माँ बेटे का मिलन हो रहा हो। फिलहाल सभी उदास से थे। तभी वंशिका सिचुएशन संभालते हुए बोली, आप सब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वैसे भी मैंने इसके रिगार्डिंग अपने गुरुजी से बात कर ली है। बहुत जल्द ही हम इसका एंटीडोट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जानबूझकर अरमान भैया की केवल वही यादें मिटाई गई हैं जिन यादों में हम लोग उनकी जिंदगी में आए थे। स्पेशली आस्था उनकी जिंदगी में आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर अरमान भाई को फिर से दर्द भरी अंधेरों की दुनिया में वापस धकेलना चाहता है, जिससे वो कभी बाहर ना निकल पाए। मुझे लगता है कि हमें उस अनजान दुश्मन के बारे में तो पता लगाना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें भाई को ठीक करने की पूरी करनी होगी। सभी लोग वंशिका की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे
और आकाश ने अपने आदमियों को एक्टिवेट कर दिया था। साथ ही साथ टाइगर और मारिया से बढ़िया कोई इन्वेस्टिगेटर हो ही नहीं सकता। उन्हें ही इस बारे में पता लगाने के लिए भेजना होगा कि आखिर ब्लैक डेविल को मारते वक्त अरमान के साथ चॉपर में लास्ट टाइम कौन था और किसकी हिम्मत थी जिसने अरमान सिंघानिया के चॉपर पर कब्जा कर लिया और अरमान शरीर में एक खतरनाक वायरस इंजेक्ट किया जिसने उसकी यादों को मिटा दिया। फिलहाल सभी के चेहरे पर एक हिम्मत, एक जज्बा दिखाई दे रहा था कि वो सब बहुत जल्द अरमान को इस सिचुएशन से निकाल कर रहेंगे, और न केवल निकाल कर रहेंगे बल्कि उसके गुनाहगारों का भी पता लगा कर रहेंगे। इसी बीच दादाजी सबको टोका, वैसे भी अब धीरे धीरे टाइम गुजर रहा है और आस्था बेटी के 15 दिन भी पूरे होने वाले हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आस्था बेटी के आते ही कुछ न कुछ तो बदलाव होगा और क्या पता अरमान को कुछ याद भी आ जाए। तभी ध्रुव मायूसी से बोला, नहीं दादाजी, अगर आपको ये लगता है कि आस्था भाभी को देखने के बाद अरमान भाई को कुछ याद आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी यादों को मजबूती से मिटाया गया है। लेकिन तभी रश्मि बोली, भले ही अरमान के दिमाग के साथ छेड़छाड़ की गई है लेकिन अरमान का दिल वो तो आज भी आस्था के लिए ही धड़कता है। हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। आस्था को देखने के बाद अरमान जरूर उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। उसे इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हुए देखकर सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। फिलहाल वहीं दूसरी ओर गार्डन में आहान और रौनक बैठे हुए थे। रौनक के चेहरे पर मायूसी साफ छलक रही थी। रौनक के एक्सप्रेशन देखते हुए आहान ने तुरंत अपने दोनों कान पकड़ लिए और रौनक के सामने जमीन पर बैठते हुए सिर झुकाकर बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने आज तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन रौनक तुरंत रिएक्ट करते हुए उठ खड़ी हुई और आहान का हाथ थामकर उसे अपने पास बैठाते हुए चंचलता से बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, जानती हूँ कि सचमुच सिचुएशन खराब है और मैं ही थोड़ी सी फ्रैंक हो गई थी। मुझे ही याद नहीं रहा कि अरमान भाई की यादें अब नहीं है, वरना तुम जानते हैं ना, अरमान भाई ने मुझे अपनी बहन बनाया था और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ उतना ही प्यार मैं अरमान भाई से भी करती हूँ, तो मुझे उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा।
मुझे तो बस सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब हमें उन पर हमला करने वाले के बारे में पता चलेगा, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम देखना, मैं अपने फेवरेट बेट से मार मारकर उसका भर्ता बना दूंगी। रौनक की बातों में गुस्सा और दर्द दोनों था। वो दांत पीसते हुए बोली जा रही थी। रौनक के ऐसे बोलने पर आहान ने गहरी सांस ली और उसे बाहों में भर लिया और धीमी आवाज में उसे छेड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी हवा हवाई इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। तब रौनक ने हल्की मुस्कान दी और आहान को हल्का सा धक्का मारते हुए बोली, बस बस, तुम्हें तो मैं हमेशा पागल ही लगती हूँ। फिलहाल दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर अरमान अब सीधा टाइगर के साथ ऑफिस जा रहा था, क्योंकि जब से अरमान को पता चला था कि मारिया प्रेग्नेंट है तो इसलिए अरमान ने मारिया को अपने साथ लेकर जाने से साफ मना कर दिया था और वो सिर्फ टाइगर के साथ ऑफिस रवाना हो चुका था। वहीं सुमित ने फ़ोन पर पहले ही ऑफिस के सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि कोई भी अरमान के सामने किसी भी तरह की बातें नहीं करेगा, और वैसे भी जब से अरमान नॉर्मल हुआ था सब लोगों से बड़े ही प्यार से पेश आता था। लेकिन अब एक बार फिर से अरमान का डेविल रूप लौट रहा था जिसका असर इस वक्त सभी लोगों पर पड़ने वाला था। फिलहाल सब लोगों ने गहरी सांस ली और जैसे ही अरमान अपने ऑफिस पहुंचा उसे देखते ही सभी लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए, लेकिन अरमान बिना किसी की ओर देखे सीधा अपने फ्लोर पर आ गया। वहां जाकर उसने टाइगर से बोला, मेरे सेक्रेटरी को अंदर भेजो ताकि वो मुझे ऑफिस की पूरे 2 साल की डिटेल्स दे सके। जब से मेरी यादें गई हैं तब से क्या क्या हुआ है, ऑफिस की वो सारी बातें मुझे जाननी होंगी। अरमान किसी के सामने ये एहसास नहीं होने देना चाहता था कि उसमें किसी तरह की कोई कमी आ गई है। वो एक बार फिर से परफेक्ट जेंटलमैन की तरह दिखना चाहता था जिसके आगे सभी लोग पानी कम थे। फिलहाल टाइगर ने गहरी सांस ली और बाहर निकलकर सेक्रेटरी के रूम की ओर गया, क्योंकि आकाश पहले ही बता चुका था कि अरमान के लिए नया सेक्रेटरी हायर कर दिया गया है और साथ ही उसे सारी बातें भी समझा दी गई हैं। फिलहाल वो देर नहीं करना चाहता था। अब जैसे ही टाइगर वहां गया उसने देखा कि जीन्स और उसके ऊपर एक कुर्ता डाले हुए एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसके भूरे बाल उसके पूरे कंधे पर फैले हुए थे। तभी टाइगर वहां उसके पास आया और उसे कुछ उखड़े अंदाज में देखकर बोला, जाकर बॉस को पूरी डिटेल्स दो और उनकी सारी अपडेट दो। उनके आगे अगले 3 दिनों में, 1 हफ्ते में उनकी कौन कौन सी मीटिंग होने वाली है वो भी बता देना, और साथ ही साथ अगर वो तुमसे पिछले 2 साल का डेटा पूछे तो तुम्हें वो भी बताना होगा। क्या तुम तैयार हो ये सब बताने के लिए? तब वो लड़की टाइगर की बात सुनकर पहले तो थोड़ा सा कांप गई थी, फिर अपने होंठ काटते हुए तुरंत खड़ी हुई और बोली, जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तब टाइगर ने एक नज़र उस सेक्रेटरी की ओर देखा। न जाने क्यों टाइगर को पहली बार किसी लड़की को इस तरह देखकर अजीब सी फीलिंग आई थी, जिससे फिलहाल वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया और सीधा अरमान के पास आ गया था। तभी वो लड़की
जो कि अरमान की नई सेक्रेटरी थी और उसका नाम कोई और नहीं बल्कि संजना सिंह था। उसने जल्दी ही कांपते हुए एक बड़ी सी फाइल्स अपने हाथों में थामी। कहीं ना कहीं उसका मन पूरी तरह से बेचैन था और अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने अरमान सिंघानिया के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। ये उसका ड्रीम जॉब था और कोई भी गलती करके वो अपने जॉब को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। फिलहाल उसने खुद को तैयार किए और सीधा अरमान के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल के लिए संजना अरमान को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी टांगें कंपा रही हों, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाले रखा। संजना सिंह काफी समय से अरमान की कंपनी में काम करने के लिए तरस रही थी और जब से उसे आकाश का कॉल आया तब से वो खुशी से हवा में उड़ रही थी। फिलहाल अब जैसे ही संजना लगातार वहां खड़ी होकर केवल अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखती रही, अरमान ने उसकी ओर एक नजर डाली थी और फिर उसने तिरछी नजरों से केवल टाइगर को इशारा किया। तब टाइगर, जो कि संजना को नर्वस होते हुए देख चुका था और वो जानता था उसके बॉस के सामने तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े VIP तक कांप उठते हैं, ये तो फिर भी एक मामूली सी सेक्रेटरी है। फिलहाल जल्दी ही टाइगर ने अपना लहजा थोड़ा नरम करते हुए संजना को ऑर्डर दिया, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया गया है फटाफट से अपना काम शुरू करो, बॉस को टाइम बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब टाइगर की बात सुनकर संजना का दिल अंदर थोड़ा शांत हुआ गया और फिर उसने जल्दी ही थोड़ा सा खुद को कंसोल करके अरमान को पूरा प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। इस बीच अरमान ने एक नजर संजना सिंह को देखा और उसके बाद अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करने लगा, फिर बड़े ध्यान से सारी डिटेल्स सुनने और नोट करने लगा। अरमान ने उसे एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं दिखाया। फिलहाल उसकी नजरें पूरी तरह से बस फाइल पर ही थी। भले ही संजना फाइल से देखकर बोल रही थी, लेकिन उसे सब कुछ जबानी याद था, क्योंकि अरमान की मीटिंग के लिए उसने कई रातें जाकर तैयारी की थी। वो पूरी तैयारी के साथ बाकी सबके सामने उपस्थित हुई थी और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसने गहरी सांस ली, मानो कि उसने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अब अरमान को सारी डिटेल्स देने के बाद कहीं ना कहीं उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हुई और धीरे धीरे उसने अरमान को देखने की कोशिश की। फिलहाल संजना से डिटेल्स लेने के बाद अरमान ने दमदार आवाज में कहा, ग्रेट वर्क, और फिर उसके बाद उसने टाइगर को देखा। टाइगर ने तुरंत अरमान की नजरों को भांप कर संजना को वहां से जाने का इशारा किया। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों की कमेंट आ रही है कि स्टोरी आगे चलकर अब बोरिंग हो गई है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ऑलरेडी स्टोरी 330 चैप्टर पर फिनिश हो चुकी थी, लेकिन आप लोगों की भारी डिमांड पर मैंने स्टोरी का सेकंड सेशन शुरू किया है, उसी में ऐड करके कुछ अलग से इसको नहीं लिखा है। तो आई होप अगर आप स्टोरी थोड़ा सा वापस से स्टार्ट हुई है तो थोड़ी बहुत चीज तो चेंज करनी होगी और काफी कुछ कैरेक्टर भी ऐड करने होंगे। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे और अपना साथ बनाए रखेंगे।